ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से सातवां स्कंध अध्याय 6। इस अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। श्लोक संख्या 24। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावं आसुरं उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षज। तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर दया कुरुत दिखलाओ सौहृदं मैत्री भावं भाव या प्रकृति आसुरं असुरों का जो मित्रों तथा शत्रुओं को पृथक करते हैं उन्मुच्य त्याग कर यया जिससे तुष्यति प्रसन्न होते हैं अधोक्षज परम भगवान जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कितना प्रसाद ला दिया पहले ही सबको बांटने के लिए रहे। अनुवाद तात्पर्य भक्तिविदान स्वामी प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव हे असुरे से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों तुम सब ऐसा करो कि वे परम भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं वे तुम पर प्रसन्न हों। तुम अपनी आश्रय स्वभाव त्याग दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य भगवत गीता 18:55 में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति जावन यस्यस्मि तत्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथा रूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य की इस सेवा में लग जाता है उससे भगवान तुरंत नहीं अति प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता 18:69 में की है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकीर्तमः। इस संसार में न तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के जस तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावना अमृत को फैलाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता है, तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है। जैसे ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वह सेवा करता है, तेम ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावना का प्रचार करे। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की यही विधि है। मुक्तारंभ जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन तीन सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदयम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावना अमृत से अनजान हैं, अतएव उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावना अमृत की शिक्षा दे। चूंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतःतल में विद्यमान हैं, अतएव प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने में से न करें। यदि नारायण दरिद्र अथवा गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका अर्थ नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षड ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात वे सदैव सभी परिस्थितियों में छह ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्जिर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूस पुरुषम् भोक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम् सोलं कृषिष्ठं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुख काज जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन भगवान व्यास देव जीवों के कल्याणार्थ प्रचार करने हेतु इस धराधाम पर भगवान व्यास के रूप में आए। माया मुग्ध जीवेर नाहि स्वतः ज्ञान जीवेर कृपाय कृष्ण कैल वेद पुराण। जीवों पर कृपा करके भगवान व्यास देव के रूप में आए और वेद पुराणों का रचना किए जीवों पर कृपा करने के लिए। तो आज व्यास भगवान का आविर्भाव तिथि है और आज का श्लोक भी है वो व्यास देव पर ही है। जीवों पर करुणा का ही बात चल रहा है। साथ साथ आज श्रीपाद सनातन गोस्वामी का भी आविर्भाव की तिरुभाव तिथि है। तो ये भी बड़ा पुण्य तिथि है। सनातन गोसाई भी इस धराधाम पर आए और भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त कर करके वो भी यही कार्य किए जो आज के श्लोक में वर्णित किया गया है। सर गोस्वामी लोग यही करते धीर अधीर जनक प्रिय प्रिय करऊ। सबको आनंद देने के लिए वे थे और प्रचार कार्य बड़े जोर से उसे किए। उन लोगों की ही कृपा है कि आज हम लोग वृंदावन को समझ सकते हैं, वृंदावन के लीला स्थलियों को समझ सकते हैं, वृंदावन के लीलाओं को समझ सकते हैं। इनमें षट गोस्वामियों का बड़ा हाथ है। साथ साथ आज परम पूज्य श्रीपाद भक्तिचारु स्वामी महाराज का भी तिरुभाव तिथि है। तो ये भी अपना जीवन इस संसार में अपना जीवन का सदुपयोग किए इस श्लोक को पालन करने में भी। तो यह श्लोक जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। यह एक महाजन प्रहलाद महाराज के द्वारा बोला गया है। भागवतम में सब कुछ इम्पोर्टेंट है लेकिन फिर भी महाजन लोग हैं, महाजनों जेन कथा सुपंथा, वे लोग हम लोगों के लिए अच्छा रास्ता एक्सप्रेसवे का निर्माण करते हैं। हाईवे नहीं, एक्सप्रेसवे। आप लोगों को अनुभव है ना एक्सप्रेसवे का, जमुना एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे। हम अभी दो दिन पहले, चार दिन नहीं तीन दिन पहले कानपुर से आ रहे थे। पहले यहाँ से कानपुर जाने में 6-8 घंटा लगता था, अब कानपुर से आने में वृंदावन ढाई घंटा में हम आ गए, क्योंकि एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे है। तो वैसे ही पहले भगवान को जानना जो था वो रोड से जाना था, वेद पुराण इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये महाजन लोग एक्सप्रेसवे क्रिएट किए। जैसे अमेरिका में प्राय सब जगह हाईवे तो हैं लेकिन एक्सप्रेसवे है। लेकिन कितना भी एक्सप्रेसवे क्रिएट कर दिया जाए लेकिन इंडियन लोग इंडियन होते हैं, वो पालन करते ही है नियम नहीं। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज इत्यादि एक्सप्रेसवे तो क्लियर कर दिए हैं, क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन हम लोगों को सीरियस रहना चाहिए, नियम कानून को पालन करना चाहिए, न कि इंडियन बन के रहना चाहिए, अपने अनुसार चलता है। एक्सप्रेस वे तो है लेकिन पालन करना, उस रास्ते पर चलना। इसलिए कहा महाजनो जैन गथा सुपंथा, रास्ता बड़ा अच्छा है लेकिन उस पर चलना सीखना चाहिए। तो इन्हीं महाजनों का चरण चिन्ह पालन करते हुए श्री प्रभुपाद जी हम लोगों को भी रास्ता भी तो क्रिएट हुआ ही है, रास्ता पर कैसे चलना चाहिए इसको प्रभुपाद जी सिखाए हैं। जो प्रहलाद महाराज यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी वही कहते हैं। प्रभुपाद जी चार चीज कहते हैं, कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। प्यूरिटी वह शक्ति है, हमें शक्ति प्रदान करती है। जब तक से शक्ति ना हो कोई काम नहीं कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली 35 मिनट के बाद में एक शक्ति जगती है हमारे पेट में जिसे भूख कहते हैं। यदि भूख न हो तो कितना भी सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो मजा नहीं आएगा। तो भूख होना, कोई काम में शक्ति की जरूरत है। प्रभुपाद जी कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, शक्ति से ही गति उत्पन्न होती है और वह आता है प्यूरिटी से, शुद्धता से। प्यूरिटी कैसे प्राप्त होती है, शुद्धता कैसे प्राप्त होती है, वह होती है साधु संग से। आदौ श्रद्धा तथो साधु संगत भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। साधु संग से भजन क्रिया शुरू होता है, उसके बाद जो अनवांटेड डिजायर हैं, अशुद्धि है, विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां हैं, वो सब शुद्ध हो जाती है। तो प्यूरिटी दी फोर्स, जैसे चार नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, अर्ली मॉर्निंग उठना, मंगला आरती, क्लास, गुरु पूजा, प्रभुपाद जी दिए हैं हम लोगों को, इससे प्यूरिटी की प्राप्ति होती है। प्यूरिटी दी फोर्स एंड बुक्स आर दी बेसिस। हम कुछ भी बोले उसका आधार होना चाहिए, बिल्डिंग बना है ऐसा कोई आधार होना चाहिए, बिना आधार के बिल्डिंग कैसे बना जाए, गिर जाएगा। तो हमारा जो कृष्ण भावना है उसका आधार होना चाहिए और वह आधार है इस शास्त्र। भगवान चैतन्य महाप्रभु षठ गोस्वामियों को दो चीज में से एक कहे कि शास्त्रों का निरूपण करो, और प्रभुपाद जी भी इसीलिए बहुत से शास्त्र दिए हम लोगों को। तो बुक्स आर दी बेसिस एंड यूटिलिटी इज दी प्रिंसिपल। सब कुछ भगवान के से हमारा कैमरा लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, घड़ी, मोटर कार, प्लेन, सब कुछ, लेकिन ये सब किसके लिए है, प्रचार के लिए। प्रीचिंग इज दी एसेंस, प्रचार ही सार है। तो कृष्ण भावना अमृत संघ के जो भक्त लोग हैं उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए प्रचार करना, पहले सुने और सुनने के बाद में सुनाए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई खूब पढ़ता है लेकिन प्रचार नहीं करता है तो वह एनवियस बन जाता है, वह द्वेषी बन जाता है, दूसरों में कमियां ढूंढने लगता है। तो सुनने का मतलब है प्रचार करना, और जो प्रचार नहीं कर रहा है सुनने के बाद में तो उसका जीवन कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा, जैसे खाने के बाद यू नो मलमूत्र त्यागना चाहिए, नहीं तो पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। वैसे ही सुनने के बाद प्रचार करना चाहिए। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को सुनाए, इस श्लोक से पहले प्रहलाद महाराज प्रचार किए और इस श्लोक में कहते तुम लोग भी प्रचार करो। प्रहलाद महाराज प्रचार किए और कहते तुम भी प्रचार करो, यही प्रचारक का लक्ष्य है। प्रचारक जो होते हैं वो बिजली के करंट के समान होते हैं, ये पंखा चल रहा है, सब चल रहा है, क्योंकि इसका संबंध बिजली से है। तो प्रचार वही कर सकता है जिसका प्रचारक से संग हो। जो प्रचार करेगा वो कहेगा जाओ प्रचार करो। इसलिए प्रहलाद महाराज ये श्लोक शुरू कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम् आसुरिम आसुरम भावम उन्मुच्यः या तुष्यति अधोक्षज। भगवान अधोक्षज को, कृष्ण को प्रसन्न करने का तरीका है, वह तरीका है कृष्ण भावना का प्रचार। प्रश्न उठता है किसको प्रचार किया जाए, तो प्रहलाद जी कहते हैं सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु समस्त प्राणियों में प्रचार किया जाए, सब कृष्ण के अंश हैं। यदि शुद्ध रूप से प्रचार किया जाएगा तो प्रत्येक प्राणी कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जब वृंदावन आ रहे थे तो उन्होंने प्रचार किया, और कैसे हाथी शेर हरिण सब लोग अपने वैमनस्य को, अपने सतुता भाव को त्याग कर करके नाचने गाने लगे। तो जितने भी लिविंग एंटिटी हैं वो सब कृष्ण के अंश हैं, कृष्ण के दास हैं। इसलिए सभी प्राणियों को, सभी प्राणियों के बीच में ये प्रचार करना चाहिए। क्या इसके लिए, प्रचार के लिए यहां पर प्रहलाद जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौहृदम्। ये तो काम हम लोगों को करना है, सभी प्राणियों पर दया करना है, अपना सौहृदय दिखाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, कहते आसुरम भावम उन्मुच्य। हम सब में आसुरिक प्रवृत्ति है, और वह आसुरिक प्रवृत्ति क्या है, इंद्रिय तृप्ति की कामना। आसुरिक प्रवृत्ति है इंद्रिय तृप्ति की कामना, जो भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय में वर्णन किए हैं, असुर का डिफिनीशन दिए हैं कि असुर किसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे दिखाते हैं असुर ऐसे मूवी इत्यादि में कि असुर कैसा होता है, ऐसा नहीं कि उसका बड़ा बड़ा सिंह हो, लंबा दो कुछ दांत हो, इनो खूंखार ऐसा लगता हो। वह तो हैं ही दैत्य इत्यादि लोग, लेकिन असुर व्यक्ति अपने सोच विचार से होता है, अपने आचरण से होता है, अपने चाल चलन से होता है, अपने व्यवहार से होता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं आसुरम भावम उन्मुच्य। उन्मुच्य मतलब श्री स्वामी कहते हैं संतज्य, सम्यक रूप से टोटली कंप्लीटली उसको छोड़ दो, त्याग दो, सम्यक रूप से त्याग दो। किसको, आसुरी भाव को। प्रचारक को इंद्रिय तृप्ति की भावना त्यागनी पड़ेगी। जब तक से इंद्रिय तृप्ति की भावना रहेगी हम प्रचार नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के प्रति दया नहीं दिखा सकते हैं, करुणा नहीं कर सकते हैं। तो आखिरी भाव क्या है? दम्भो दर्प अभिमानम च क्रोध पौरुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य अभिदातस्य पार्थ संपद आसुरीम। भगवान ये आसुरी संपत्ति को बतलाते हैं, कहते हैं दम्भो अहंकार, जिसमें अहंकार है वह आसुरी प्रवृत्ति का है। ऐसा बात नहीं है कि यहां गीता के पन्नों में भगवान बताएं केवल अर्जुन के लिए, ये हम सब लोगों के लिए। तो हम सब लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमें अहंकार कितना है। अच्छा, ये आश्रय जो स्वभाव है वो दिखाई नहीं पड़ता है, अहंकार दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोगों को परिचय है ना अहंकार से, बताने की जरूरत नहीं है, सबको परिचय है, सब में कुछ ना कुछ है अहंकार। दूसरा कदम दर्प घमंड, एक एक शब्द का मतलब है। घमंड और घमंड को लोग कहते हैं अभिमान, भगवान कहते हैं नहीं नहीं अभिमान अलग है। तो दम्भ दर्प अभिमानम, अभिमान मतलब गर्व, किसी वस्तु को लेकर के मुझे गर्व है। कोई सुंदर है तो उसे सुंदरता का अभिमान है, कोई एमटेक बीटेक किया है तो उसको एमटेक बीटेक का अभिमान है, गर्भ च और भी च मतलब अन्य भी है। उसके बाद क्रोध गुस्सा और पौरुष्यम मतलब निष्ठुरता। ये लगता है कि सब घमंड के अंदर ही सब आ जाता है, लेकिन सब अलग अलग है। एवच निश्चित रूप से इनको छोड़ना पड़े, ये आश्रित प्रवृत्ति है निश्चय, इसमें कोई द्वारा नहीं है। अज्ञानम उसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है लेकिन समझता है मैं ही सब कुछ हूं। च अभिजातस्य ये सब आसुरी प्रवृत्ति है। तो यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं आसुरम भावम उन्मुच्य, आसुरी भाव को सम्यक रूप से पहले त्यागना पड़ेगा। जब तक से आसुरिक भाव रहेंगे तब तक से प्रचार कार्य नहीं हो सकता, तो इसको त्यागना है। और करना क्या है, जैसे चार नियम का पालन बताया गया है, यह मत करो यह मत करो यह मत करो, नो मीटिंग नो गैम्बलिंग नो इंटॉक्सिकेशन नो इलिसिट सेक्स, ये नहीं करना है। और करना क्या है, जैसे डॉक्टर बतलाते हैं ये मत खाओ और ये दवा लो, तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज फर्स्ट क्लास के डॉक्टर हैं और वे बतला रहे हैं कि क्या करना है। अच्छा तरह से प्रचार किए, अब उन असुर बालकों से कहते हैं हे मित्र, बड़े प्यार से कहते तस्मात देयरफॉर इसलिए हे मित्रों, पहला काम करो कि आसुरी भाव को अपने आगे पीछे फटकने मत दो। उन्मुच्य जो भी प्रचारक है उसे प्रहलाद महाराज से शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे जो आसुरी भाव है अहंकार घमन गर्व क्रोध निष्ठुरता और सब मिला करके इंद्रिय तृप्ति, ये सब आता है इंद्रिय तृप्ति की भावना से, इंद्रिय तृप्ति की भावना, तो पहले इसको त्यागना पड़ेगा। उसके बाद समस्त प्राणियों के प्रति दो काम करने के लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं। पहला कहते हैं दया। दया किसे कहते हैं इसे समझें। दया का मतलब होता है कि किसी के दुख को दूर करना। दया तद दुखम प्रहण, किसी के दुख को प्रकृष्ट रूप से हरण कर लेना, प्राण हरण कर लो, खत्म कर दो उसके दुख को। भगवान का एक नाम है हरि, हरि का काम है हरण करना। भगवान कभी कभी सुख भी हरण करते हैं और दुख भी हरण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कोई कहता दुख भगवान हरण करते हैं, ठीक है, लेकिन सुख हरण क्यों कर लेते हैं? भगवान इसलिए भक्तों के सुख का हरण करते हैं कि वह सुख दुख का कारण बन जाता है। जब धन संपत्ति होता है, ज्यादा सुख होता है, तो भगवान को भूल जाते हैं, नोट गिनना शुरू करते हैं। माला गिनने के अलावा, माला जप करने के बजाय हम नोट का जप करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान का एक कृपा है कि वो नोट को हर लेते हैं, सुख को हर लेते हैं, क्योंकि वो सुख भक्ति में बाधक है। और हर करके भगवान आनंद देते हैं, अपने शरण में लाते हैं। तो दया का मतलब होता है दुख प्रहरण, दुख को प्रकृष्ट रूप से हरण कर लेना। कुछ तो शारीरिक दुख हैं और कुछ हैं मानसिक दुख। हम लोग प्रायः शारीरिक दुख के हरण में लगे रहते हैं। जो समाज के लोग हैं वे लोग प्रायः शारीरिक दुख को हरते हैं। अभी देखो एक कोरोना काल आया था, तो शरीर के दुख को हरने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, हॉस्पिटल खोलो, क्या क्या, कितना कितना, ये जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन इस दुख का जो हरण है वह समूल नहीं है, क्योंकि दुख होता है हमारे कर्मों से। कर्म जरूर देह से ही होता है, लेकिन जो कराने वाला है आत्मा, कभी कभी प्रभु जी आत्मा को मन भी कहते हैं, शरीर संबंध। तो एक तो शारीरिक दुख, मानसिक दुख, और आत्मा का इस शरीर से संबंध का जो दुख है वह, तो तीन प्रकार के दुख है एक तरह से। तो जो कृष्ण भावना का प्रचार करता है वो तीनों दुख को दूर करता है। ये असली दया है, दया यही है। बहुत ऐसे लोग होते हैं वो कुत्तों के प्रति खूब दया करते हैं, उसके लिए क्या क्या नहीं। राधारमण महाराज से पूछिए, जो अमेरिका गए जानते हैं, वो कुत्तों के लिए 5-star होटल भी अमेरिका में बने हुए हैं। कभी कभी लोग जाते हैं अपना घूमने के लिए, अमेरिका से बाहर जाते हैं, तो कुत्तों को कहाँ ले जाएंगे। तो 5-star होटल में $200 पर डे लगता है, हैं 14,000-15,000 रुपया पर डे कुत्तों को। अब वहाँ देखभाल करने वाले भी हैं। एक कुत्तों पर दया करते हैं लेकिन गाय का मांस खाते हैं। यहां पर प्रहलाद महाराज कहते हैं सर्वेश भूतेषु, समस्त प्राणियों पर, न कि केवल कुत्तों पर ही। और जो इस प्रकार से दया करता है समस्त प्राणियों पर, सब पर, बिना भेदभाव के, या तुष्यति अधुक्षत, यया मतलब दया, दया के द्वारा, सुहृदता के द्वारा, जब भगवान देखते हैं कि यह भक्त प्रचार करने जा रहा है, नामेरति जीवे दया वैष्णव सेवन, यहां छाड़ी धर्म नाय सुनो सनातन। सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी गई थी महाप्रभु द्वारा। नामेरति, नाम में प्रगाढ़ प्रेम हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम।
और जीवे दया सर्वेश भूतेषु दयाम, समस्त प्राणियों के प्रति दया। और तीसरा वैष्णव सेवाम, और वैष्णव का हम सेवा करें, यही मानव समाज के लिए धर्म है, यही धर्म है। प्रचार करना, दया, ये दया ही है कि भक्त प्रचार करने जाते हैं। दया परवश ही प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। तो यदि कोई दया दिखाता है तो भगवान अधोक्षज उससे प्रसन्न होते हैं, एक तो बात यह। और यदि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब कहना ही क्या है, फिर आनंद, जो हमारा खोया हुआ धन है वो प्राप्त हो जाता है। हम लोगों का धन है आनंद सुख, जिसको हम खो दिए हैं, लेकिन दया करने से वह धन प्राप्त हो जाता है। एक इस संबंध में उपदेशेर उपाख्यान, एक उपाख्यान है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक बार भगवान कृष्ण आए थे पांडवों से मिलने के लिए, जब वे लोग खांडव प्रस्थ में निवास कर रहे थे, इंद्रप्रस्थ बनने वाला था। तो अर्जुन और कृष्ण प्रायः बाहर जाते थे। जब अर्जुन और कृष्ण बाहर जा रहे थे, मैं अपने अनुसार कहता हूं कि संडे का दिन था और अर्जुन और कृष्ण मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। जब जा रहे थे तो देखे कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन तो भक्त हैं तो उनमें दया आ गई और उस ब्राह्मण को एक सोने का पोटली, इतना बड़ा होगा मेरे मालक जैसा, ऐसे सोने का पोटली, सोने के सिक्के में थे, भरा हुआ था। अर्जुन निकाले और ब्राह्मण को दे दिए। ये लोग चले गए मॉर्निंग वॉक पर। पंडित जी जा रहे थे तो हाथ में सोने का गठरी है, सोने के सिक्कों का, लेकिन मन कहीं और था। उनका मन और सोने के सिक्के से डिस्कनेक्ट हो गया था। मन से सोच रहे थे इसको बेचूंगा तो पत्नी के लिए गहना खरीदूंगा, साड़ी खरीदूंगा, बच्चों के लिए खरीदूंगा, गाय खरीदूंगा, घर खरीदूंगा। जो लोग सोचते हैं धन वाले पैसे में इतने लगे रहते हैं कि सब कुछ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो धनी हो गया था अर्जुन के कृपा से, अर्जुन के दया से वो डिस्कनेक्ट हो गया सब प्रकार से, और लेकर के जा रहा था लेकिन मन कहीं और लगा था। तब तक से एक चोर पीछे था और वो भी देख रहा था कि अर्जुन ने उसको दिया है, और उनका पीछा करना शुरू किया था पंडित जी का। कुछ दूर जाने के बाद वो चोर गया, बूम, उनके हाथ से छीना और भाग गया। तब पंडित जी जगे, उनका मन आया, अरे क्या हो गया, चोर चला गया। और चोर चला गया, चोर थोड़ा तेज भागते हैं, वो प्रैक्टिस खूब करते हैं, पुलिस वालों जैसा खूब भागते हैं। तो भाग गया। अब दूसरे दिन पुनः अर्जुन और कृष्ण मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और देखे कि पंडित जी फिर वहां पर आकर भीख मांग रहे हैं। तो द्वापर युग का बात था। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, पंडित लालची हो गया, कल दिया इतना बड़ा सोना का गठरी और आज फिर आ गया। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया, कुछ बोलने वाले थे। भगवान ने कहा कि अर्जुन शांत रहो, पहले उस साइड का भी स्टोरी सुन लो, क्या बात है, पहले पूछो क्या हुआ, गुस्सा क्यों करते, पहले पूछ लो। उसे शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। हम लोग प्रायः कुछ गलती किसी से हो जाती है, कुछ हो जाता है तो हम तुरंत गुस्सा करते हैं। अरे पहले सेकेंड उस साइड का स्टोरी सुन लो, दोनों साइड का सुनने के बाद तब तुम्हें जो करना है करो। तो भगवान वही उपदेश दिए अर्जुन को कि तुम सुन लो। जब अर्जुन पूरा वृतांत सुन लिए तो अर्जुन को पुनः दया आया उस पंडित जी पर। तो इस बार अर्जुन एक हीरा दिए, 2-4-5 कैरेट का हीरा होगा, इतना बड़ा हीरा दिए। पंडित जी हीरा लेकर गए, नींद भी हीरे के समान बड़ा मीठा होता है, अच्छा होता है। तो जो हीरा प्राप्त कर रहे हैं नींद के रूप में जग जाएं, नहीं तो हीरा खो जाएगा। तो पंडित जी वो हीरा लेकर गए घर पर, बेचारे बड़े गरीब थे। उनके घर में 2 मटकी थे, मटकी जानते हो ना, मिट्टी का बर्तन, आजकल बताना पड़ता है मटकी किसे कहते हैं, वो शहर वाले लड़के नहीं जानते हैं। तो 2 मटकी था पानी लाने के लिए, तो 1 मटकी था जो यूज नहीं होता था। तो पंडित जी उस मटकी में ये हीरा रख दिए, वहाँ तो तिजोरी नहीं था, द्वापर युग का बात था, बक्सा भी नहीं था, वो मटकी में रख दिए और सो गए कि कल सुबह उठ करके इसको भजाऊंगा, हीरा को बेच करके जो भी चाहिए। और आप लोग जानते हो मोदी जी उस समय नहीं थे, तो गांव गांव में बाथरूम टॉयलेट नहीं था, तो स्त्रियां जाती थी, स्त्रियां पहले जगती है, पुरुष लोग बाद में जगते हैं। तो उसकी पत्नी सुबह उठी और जल लाने के लिए, नदी से जल लाने के लिए मटकी लेकर के गई। अमावस्या की रात्रि थी, बड़ा अंधेरा था, आते समय उसको ठोकर लग गया और गिर पड़ी और जल से भरा जो मटकी था वो टूट पड़ा। अब घर में दूसरा मटकी था जिसमें इन्होंने हीरा रखा था, अब वो मटकी लेकर गई पानी लाने के, घर के लिए पानी चाहिए है। अब बहुत दिन से मटकी यूज नहीं हुआ था, तो नदी में खूब धोने लगी अच्छी तरह से, और जो हीरा मटकी में रखा हुआ था वो नदी में गिर पड़ा, पानी होने लेकर के आई। पंडित जी सुबह सुबह जगे, तो भागते भागते गए तो मटकी वहां पर नहीं है, तो अपने पत्नी से पूछे, तो उसने पूरा वृतांत बताया कि कैसे क्या हुआ, उसको क्या मालूम था कि उसमें हीरा पड़ा हुआ है, वो बताए तो थे नहीं पंडित जी। इसलिए जितने पति लोग हैं अपने पत्नियों को सब बचा करके रखना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा बाद में। मेरी पत्नी भी सुन रही हूँ, कहेगी आपने बताते हो हमको। तो पंडित जी बताए नहीं थे, तो बेचारी वो जानती नहीं थी। तो जब हीरा जब चला गया तो पंडित जी सिर फोड़ने लगे, हाय हाय मेरा भाग ही फूटा हुआ है, अर्जुन इतना प्रयास किए हमको, इतना दया किए हम पर कि पहले सोने की गठरी दिए वो चोर लेकर चला गया, दूसरे बार हीरा दिए वो भी चला गया। तब अर्जुन और कृष्ण तीसरे दिन मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और पंडित जी फिर वहां पर आ गए। अर्जुन जब देखे उन्हें बहुत गुस्सा हुआ अर्जुन को, कहे कि कृष्ण ये सही में लालची है, झूठ भी बोलता है, एक तो लालची है ऊपर से झूठ बोल रहा है। भगवान ने कहा कि फिर भी अर्जुन पूछ लो क्या हुआ, एक बार फिर पूछ लो उसे क्या हुआ। तो 2 पाप लालच और झूठ ब्राह्मण के लिए ठीक नहीं है। तो अर्जुन फिर पूछे क्या हुआ, पंडित जी फिर आ गए, क्या हुआ इस बार क्या हुआ। तो पंडित जी पुनः वृतांत बताए, ब्राह्मण लोग सत्य बोलते थे, 2 अपरजु का बात था। तो अर्जुन को फिर दया आ गई, तो अर्जुन फिर कुछ देना चाहते थे, भगवान ने कहा अब तुम मत दो, तुम दे करके देख लिया ना, अब मैं दे रहा हूं। तो भगवान पंडित जी को 2 आना दिए, 2 आना जानते हैं आप लोग ना, कितना हुआ 2 आना, मतलब 12 पैसा। आजकल के बच्चे 2 आना नहीं जानते, मतलब आना क्या होता है, बोलते आना और जाना इसी को जानते हैं, उन्हें आना मता नहीं है। तो 2 आना दिए पंडित जी को, तो पंडित जी लेकर के जा रहे थे, सोचे 2 आना में क्या होगा, इसे मैं क्या करूंगा। लेकिन पंडित थे, ब्राह्मण थे, कहे लेकिन भगवान ने दिया है, कृष्ण ने दिया है, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ रहस्य है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा। तो पंडित जी जा रहे थे, तो नदी किनारे का घर था, तो नदी के किनारे एक मलाह था जो मछली मारा था, और उसके जाल में एक मछली फंसी हुई थी और तड़फड़ा रही थी। तो जो मांस खाते हैं तो उनको उनके मुख से पानी निकलेगा कि मछली तड़फड़ा रही है, लेकिन जो मांस नहीं खाते हैं उनको दया आती है। जैसे नारद जी जब आ रहे थे और देखे कि मृगारी ने जो पशुओं का वध किया था उन दया आया था, तो पंडित जी को बड़ा दया आ गया। सोचे कि दो आना में अपने अपना तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा करते हैं कि इस मछली को हम कल्याण इसका कर देते हैं, इसको खरीद कर करके और नदी में इसको स्वतंत्र कर देते हैं। दया आ गई तो वे उस मल्लाह से दो आने में उस मछली को खरीद लिए और खरीद करके अपने कमंडलों में वाटर पॉट, अभी तो हम लोग बिस्लरी का बोतल के चलते हैं, पहले वैष्णव या पंडित तो पानी का वो लेते थे बोतल, पानी होना चाहिए, गमछा और पानी, ये दो चीज हमेशा रखना चाहिए साथ में। ये बॉम्बे वाले मूर्ख हैं, कहते हैं वो भैया लोग हैं गमछा से, अरे गमछा कितना काम का चीज होता है वो समझते नहीं है, तो गमछा और पानी रखना चाहिए। तो पंडित जी मछली को अपने कमंडलों में डाल दिए, क्योंकि मछली का जीवन पानी है, मछली जल की रानी है, कैसे है वो जीवन उसका पानी है, तो पानी में डाल दिए, पानी चाहिए उसको। अब कमंडलों में लेकर के गए पंडित जी, नदी थोड़ा दूर था, तो मछली को अब पानी में डालने लगे, मछली को उठा करके पानी में डाल दिए। उसके बाद जो कमंडलों में पानी था वो दूषित हो गया था, मछली उसमें थी, तो कमंडलों को सफाई करना था। हमें याद है राधा रमण महाराज, आपको जो 50-60 साल के होंगे याद होगा, पहले लोग गांव में भी पानी जब डालना होता था तो डायरेक्टली भूमि पर नहीं फेंकते थे, हाथ पर डालते थे और हाथ से पानी नीचे जाता था, माता पृथ्वी को चोट न लगने पावे। हम लोग तो फेंकते बाल्टी के बाल्टी भर पानी, कितने असुर हम बन चुके हैं। एनीवे, तो पंडित जी वो कमंडलू का जो पानी था वो डाल रहे थे अपने हाथ से, और जो चोर था पंडित जी को पीछा कर रहा था, को पहले बार उसको तो मिल गया ए, दूसरे बार हीरा हाथ नहीं लगा, पंडित जी छिपा कर रहे होंगे, तीसरे बार सोचा कि इस बार क्या मिला हुआ है, तो चोर भी पीछे पीछे आ रहा था। तो पंडित जी जब कमंडलों का पानी डाल रहे थे तो पानी तो नीचे गिरा, गंदा पानी, लेकिन ये वही मछली थी जो उनकी पत्नी जब मटकी धो रही थी तो हीरा गिर गया था, ये मछली हीरा खा ली, पकड़ ली थी। जब ऐसा पानी डाले तो उनके हाथ में वो हीरा आ गया, क्योंकि पंडित जी दया किए थे ना, मछली पर दया किए थे, भगवान सबके हृदय में है। तो मछली अपने मुंह से जो हीरा खाई थी, ली थी, ग्रहण की थी, उसको उगल दिया पंडित जी को, आपने हमारा जीवन बचाया तो आपको पुरस्कार के रूप में आपका खोया हुआ धन मैं दे दिया, हीरा मिल गया। तो दया करने से जब पंडित जी के हाथ में वो हीरा आया, मिल गया मिल गया मिल गया, तो चोर पीछे था, समझा कि हमको पहचान लिए, ए पंडित जी हमको पहचान लिए, और ये युधिष्ठिर महाराज का राज है, अब तो मुझे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। वो पंडित तुरंत भाग करके आया पंडित जी के पास, पैर पकड़ लिया, कहा क्षमा करेगा, मेरे बेटी का शादी करना था, धन नहीं था, इसलिए मैं आपका वो ये चोरी कर लिया, देखिए आप गिन लीजिए उतना ही तो है ना, आप ले लीजिए। तो खोया हुआ धन था पंडित जी के लिए, लेकिन वो मिल गया, कैसे, उन्होंने दया किया, दया किया, और उनके दया से भगवान प्रसन्न हुए। तो दया, दया मतलब करुणा, वैष्णव का एक लक्षण है, तितिक्षव कारुणिका सुहृदम सर्वदेहिनाम अया सत्रव शांत साधव साधु शरणम। तो यहां पर दोनों जो बात बताया है, दया और सौहार्द्यम, करुणा और स्नेह, ये दो चीज जो है वह भगवान को प्रसन्न करता है। अब एक बात, यया तुष्यति अधोक्षज, यहां पर प्रहलाद महाराज अधोक्षज क्यों कह रहे हैं, माधव क्यों नहीं कह रहे हैं, ऋषिकेश क्यों नहीं कह रहे हैं, अधोक्षज कह रहे हैं। अधोक्षज का मतलब है सर्व साक्षी, भगवान सब कुछ के साक्षी हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि हम किसी पर दया करते हैं, किसी के प्रति स्नेह रखते हैं, सभी वैष्णवों को एक दूसरे के प्रति स्नेह रखना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्लोक कोट किए हैं, भुक्तारम जगतपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम, और यहां पर भी है सौहृद्यम। तो ऐसा करने से भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं भगवान। तो जिस व्यक्ति को भी भगवान को प्रसन्न करना है, उन लोगों को चाहिए कि प्रचार कार्य करें, दया करें, जीवों पर दया और आपस में सौहृद स्नेह एक दूसरे के प्रति। ये नहीं कि केवल अपने परिवार वालों से ही सौहृद बने रहें, अपने पत्नी पुत्र और परिवार से ही केवल सुहृदता रखें। कहते हैं सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों के प्रति सौहार्द होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और जो दुखी हैं उनके प्रति दया होनी चाहिए। और ये दोनों कार्य करने के लिए जिससे भगवान अधोक्षज प्रसन्न होते हैं, प्रभुपाद जी बतलाए हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश करें लोगों से। और उपदेश का सबसे अच्छा माध्यम है, प्रचार तो करें हैं, यूथ प्रीचिंग करें, कॉन्ग्रेशन प्रीचिंग करें, ये सब करें अच्छा है, लेकिन पुस्तक वितरण करना और भी अच्छा है। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति इस ज्ञान का प्रचार करता है दूसरों से, जो इस ज्ञान को लोगों को देता है, कैसे है वो नच तथा मनुष्य से, उसे पहले वाला श्लोक जो गीता का प्रचार करता है, हाँ, या इदम परमम गुह्यम भक्त से अभिधास्यति भक्ति मई पराकृतवा मामे असंशय, उसमें कोई असंशय नहीं है, वो मुझे प्राप्त करता है, वह प्राणी जो कृष्ण भावना का लोगों में गीता का संदेश सुनाता है, और वह स्वयं धाम तो प्राप्त करता है लेकिन स्वयं भगवान का प्रिय बनता, न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, बड़ा प्रिय होता है। तो इस्कान के सभी भक्तों के लिए ये सुअवसर है कि भगवान अधोक्षज को हम प्रसन्न कर सकें पुस्तक वितरण कर कर करके। तो ये भद्र पूर्णिमा का समय आ रहा है, सब लोग अपना अपना लिस्ट बना करके रखो, कितना भागवतम बांटना चाहते हो, कितना गीता। तो इस प्रकार से ये पुस्तक वितरण करना, वन टू वन प्रचार करना, ये भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करता है। ये असली दया है, कृष्ण भावना का दान देना असली दया है। तो सब मिला करके प्रहलाद महाराज यही शिक्षा दे रहे हैं अपने मित्रों के माध्यम से हम लोगों को, कि हम लोग यदि चाहते हैं कि भगवान के प्रिय बन जाए, भगवान के प्रिय बनना मतलब ऊपर जाने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो भी कहते हैं ना भगवान के प्रिय हो गए, वो बात नहीं है। या तुष्यति यथोचित, जिसे भगवान प्रसन्न हो, भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है कि हम लोग कृष्ण भावना का प्रचार करें, दया का भाव उत्पन्न करें और सुहृदता का स्नेह पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। शील भगवान की, कोई प्रश्न है? अरे बैठो, प्रसाद है, काहे चिंता करते हो, वही तो मैं कह रहा था, बैठो बैठो, प्रसाद है, काहे सब लाइन में लगोगे, जमराज जी के यहाँ भी लाइन लगना है, अभी बहुत समय है, कितना लाइन थक जाओगे, बैठो। हाँ,
अहिंसा से जब भाग जाते हैं तो स्वयं की छुट्टी की कारण या सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा के कारण प्रसाद की शक्ति जो है वो पूरी हो जाते हैं, पता दोनों का चलता है। लेकिन इस वीकनेस से भाग जैसे निकला जाए कि डिजायर भी है और आपके स्वयं की कमजोरी भी है, तो इस कमी को कैसे?
मैं आपका प्रश्न नहीं सुना, फिर से बोलिए।
दूसरी प्रश्न ये था कि जब प्रचार करने के उद्देश्य से बाहर जाते हैं तो स्वयं मुक्ति के कारण जो है विचार उतनी शक्ति से नहीं कर पाते हैं या जितना कमिटेड तरह से करना चाहिए उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, तो इस सेंस एप्लीकेशन की डिजायर है, इसको कैसे सक्रिय किया जा सकता है, इसको कैसे विजय प्राप्त की जा सकती
है? उसके लिए रो गुरु कृष्ण और वैष्णव से कृपा की याचना करो। प्रचार वही कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, जब तक से कृष्ण और गुरु की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी प्रचार नहीं हो सकता है। प्रचार वही कर सकता है जिस पर उसके गुरु का कृपा हो, जिस पर वैष्णव कृपा हो, कृष्ण कृपा हो। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि मेरे गुरु की कृपा है इसलिए मैं प्रचार कर सकता हूँ। प्रचार वही करता है जिसमें गुरु वैष्णव कृपा हो। और कोई प्रश्न? परीक्षित महाराज को 7 दिन का समय था, सुखदेव गोस्वामी के सामने घड़ी लगा दिया गया था वो दिन वाला, और यहाँ पर 1 घंटा का समय है, घड़ी लगा दिया गया, 5 मिनट ज्यादा हो गए, बोलो। दया का मतलब ही होता है करुणा। आप भी करुणा कर सकते हो क्योंकि आप भगवान का अंश हो ना, तो जो उनमें है वो आप में भी है, उनमें ज्यादा है आप में छोटा है, लेकिन जो है उसका प्रयोग करो। ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।